الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی علی فی یوم خمسین مرہ صافحته یوم القیامہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے کل بروز قیامت میں اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیو، مدنی چینل کے ناظرین، ہم آج پھر اپنے سلسلے درس بخاری شریف میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں بھی فرما لیجیے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدری چینل کے ناظرین، بخاری شریف کتاب العلم سے جس عنوان پر آج ابھی ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے علم کی حفاظت کے بارے میں۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتاب العلم میں 42 نمبر باب یہ باندھا، باب حفظ العلم، یہ باب اس بارے میں ہے کہ علم کی حفاظت کی جائے۔ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس باب میں علم کو حاصل کرنے کے انداز بتائے۔ علم یاد رکھیے کہ نور ہے اور جہالت تاریکی ہے، علم اجالا ہے اور جہالت اندھیرا ہے، علم روشنی ہے اور علم سے اخلاق سمر جاتے ہیں، علم سے کردار بنتے ہیں، علم سے حیات زندگی سمر جاتا ہے اور علم سے انسان کو جینے کا سلیقہ آتا ہے، علم سے پراگندہ اذہان پاکیزگی اور طہارت پاتے ہیں۔ علم کی فضیلت کو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا شرف فرشتوں پر ظاہر کیا تو وہ بات علم تھا کہ اللہ رب العزت نے اسماء کا علم آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھا دیا، اور اس علم کے ذریعے فرشتوں پر آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا شرف بیان فرمایا۔ اور علم کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب پہلی وحی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تو فرمایا گیا اقرا، آپ پڑھیے، اور پڑھنے کا جو تعلق ہے وہ علم کے ساتھ ہی ہے۔ آئیے سماعت فرمائیے کہ اس عنوان کے تحت امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کون سی حدیث مبارک ذکر فرماتے ہیں۔ حدیث نمبر ہے 118، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، یہ کہتے ہیں ان الناس یقولون اکثر ابو ہریرہ ولولا آیتان فی کتاب اللہ ما حدثت حدیثا ثم یتلو ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود یہ کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ بہت ساری حدیثیں بیان کرتے ہیں، یعنی کثرت کے ساتھ احادیث کو بیان کرتے ہیں، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں یہ کہتا ہوں कि कुरान में अगर ये दो आयात न होती मा हद्दस्तु हदीसा, तो मैं फिर कभी भी कोई हदीस बयान ही ना करता। फिर उसके बाद आपने वो दोनों आयात मुबारका तिलावत फरमाई, जिनका तर्जुमा यह है कि बेशक वो जो हमारी उत्तारी हुई रोशन बातों और हिदायत को छुपाते हैं बाद इसके कि लोगों के लिए हम उसे किताब में वाज़े फरमा चुके हैं, उन पर अल्लाह की लानत है और लानत करने वालों की लानत, मगर वो जो तौबा करें और सवारे और जाहिर करें तो मैं उनकी तौबा कबूल फरमाऊंगा और मैं ही हूं बड़ा तौबा कबूल फरमाने वाला मेहरबान। फिर उसके बाद ये कहते हैं कि बेशक हमारे जो मुहाजिर भाई हैं वो तो बाजार की खरीदो फरोख्त में लगे रहते हैं, और जो अंसार भाई हैं अपनी जायदादों में मशगूल रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। और अबू हुरैरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ जी भर कर रहता है ताकि आपकी रफाकत में शिकम सेरी से भी बेफिक्री रहे, और उन मजालिस में हाजिर रहता है जिन मजालिस में दूसरे हाजिर नहीं होते, और वो बातें महफूज रखता है जो दूसरे महफूज नहीं रखते। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अहादीस हैं उनको कसरत के साथ बयान फरमाया करते थे, और उसकी वजह इस हदीस मुबारक में हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने खुद ही इरशाद फरमाई, और वो क्या है, आप कहते हैं कि हमारे जो मुहाजिर भाई हैं वो तिजारत में लगे रहते हैं, यानी तिजारत उनको पसंद है, बाजार में जाते हैं, खरीदो फरोख्त में उनका दिन गुजर जाता है, और जो हमारे अंसार भाई हैं वो अपनी जायदादों में मशगूल रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, काश्तकारी करते हैं, और इसी में अपने दिन गुजार देते हैं, और मैंने तलबे इल्म को तरजीह दी है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने कसरत हदीस के बयान करने की वजह को बयान कर रहे हैं कि मैंने तलबे इल्म को तरजीह दी है और मैं अहादीस की तलब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जाता हूँ, आपकी मजालिस को लाजिम पकड़ लेता हूँ, आपकी खिदमत में रहता हूँ, इसलिए मैंने दूसरों की बनिस्बत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा बातों को महफूज किया है। और लोग जब बात करते कि सबसे ज्यादा अहादीस अबू हुरैरा बयान करते हैं तो आप रदी अल्लाह ताला अन्हु उनका जवाब देते हुए ये बात कहा करते थे कि लोग मेरे बारे में यूं यूं कहते हैं तो मैं ऐसा क्यों ना करता, जबकि कुरान में ये दो आयात मौजूद हैं जिनमें इल्म को छुपाने की मुजम्मत को बयान किया गया है। यानी हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु का इन दो आयात को पेश करने का मतलब ये था कि अगर इल्म को छुपाना मना ना होता, इल्म को छुपाने की मुजम्मत को बयान ना किया गया होता तो मैं कभी भी कोई हदीस बयान ही ना करता, मा हद्दस्तु हदीसन, कि मैं कभी भी कोई भी हदीस बयान ना करता, लेकिन चूंकि इल्म को छुपाने की मुजम्मत को बयान किया गया और ये मना कर दिया गया कि इल्म की बात को छुपाया ना जाए बल्कि इल्म का इजहार करना चाहिए, इल्म की तबलीग करनी चाहिए, इल्म को फैलाना चाहिए, इसलिए मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम से जो अहादीस समात की थी उनको मैंने आगे बयान कर दिया। इस हदीस मुबारक में न सिर्फ इल्म की हिफाजत और उसे दायमन तलब करने का जिक्र है बल्कि इसमें तो हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो की फजीलत भी बिल्कुल वाज़े तौर पर समझी जा सकती है। मदनी चैनल के नाजरीन, इल्म जब जाहिर किया जाता है मुराद यह है कि उसका इजहार इस अंदाज में किया जाता है कि आगे लोगों तक फैलाया जाता है, लोगों तक पहुंचाया जाता है, तो फिर इल्म में और मजबूती आ जाती है कि जब इंसान बार बार लोगों को सिखाता है, एक जमात आई उनको एक हदीस बयान की, फिर दूसरी जमात आई उनको वही हदीस बयान की, फिर तीसरी जमात आई वही हदीस उनको भी बयान कर दी, तो बार बार मुख्तलिफ मजालिस में और मुख्तलिफ नशिस्तों के अंदर जब एक शख्स एक ही बात को दोहराता चला जाता है तो इल्म में मजबूती आ जाती है। तो इल्म की हिफाजत का एक जरिया यह है कि इल्म हासिल करने के बाद आगे सिखाया जाए, आगे लोगों तक पहुंचाया जाए। जैसे कुरान पाक के बारे में कहा गया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआना व अल्लमहु, कि तुम में से बेहतरीन वो है जो खुद कुरान को सीखता है फिर आगे लोगों को सिखाता है। तो अगर बेहतरीन बनना है तो इसके लिए इल्म की पहले जुस्तजू की जाए, क्योंकि इल्म नूर है और इल्म से अखलाक संवरते हैं, इल्म से जिंदगी गुजारने का तरीका आ जाता है, इंसान की हयात के जो अंदाज हैं वो समझ जाते हैं, जो परागंदा अजहान होते हैं वो पाकीजगी और तहारत पा लेते हैं, गलत सोचें दूर हो जाती हैं और दिल के अंदर अल्लाह तबारक व ताला का खौफ पैदा हो जाता है, फिर इंसान गुनाहों की तरफ रागिब ही नहीं होता। इसलिए मदनी चैनल के नाज़रीन, पहले इल्म हासिल किया जाए, फिर इसकी हिफाजत के पेश नज़र आगे इस इल्म को फैलाते चले जाएं, इल्म भी महफूज रहेगा और इल्म के जरिए अमल भी आता रहेगा। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हों को ये इल्म मिला कैसे है, ये अंदाज भी उन्होंने बताए, और ये अहादीस उनको याद कैसे हो जाया करती थी, आइए वो भी समाप्त करते हैं। खुद हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो ही इस हदीस के रावी हैं। हदीस नंबर है 119। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, कुल्तु या रसूल अल्लाह इन्नी अस्माउ मिन का हदीसन कसीरा अंसाहु, कौल उबसुत रिदा का फबसत्तुहु, कौल फगरफ बियदैही सुम्म कौल दुम्महु فدممته فما نسيت شيئا بعده حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثنا ابن ابي فضيك بهذا او قال غرف بيده فيه। حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت مبارک میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم मैं आपसे हजूर से बहुत सारी बातें सुनता हूं मगर है क्या कि मैं भूल जाता हूं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी चादर फैलाओ। ये कहते हैं कि मैंने अपनी चादर को फैला दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों से चुल्लू बनाया और मेरी चादर में वो डाल दिया। फिर फरमाया कि चादर को अपने जिस्म के साथ चिमटा लो, जिस्म के साथ मल लो, या यूं कहा कि सीने के साथ मल लो। तो हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने चादर को अपने जिस्म के साथ चिमटा लिया, मल लिया। इसके बाद मैं कोई हदीस नहीं भूला। हदीस के अल्फाज हैं फमा नसीतु शैयन बादहु, के वो दिन गया और आज का दिन आया, मैं फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई चीज सुनता हूं और भूल गया हूं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। जो कुछ मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मैंने सुना वो मैंने याद कर लिया। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला ले आगे फरमाते कि हमसे इब्राहिम बिन मुंजिर ने बयान किया, उनसे इब्ने अबी फुदैक ने इसी तरह बयान किया कि यूं फरमाया कि अपने हाथ से एक चुल्लू इस चादर में डाल दी। यानी इस हदीस में अल्फाज थोड़े से मुख्तलिफ हैं। पहली जो सनत थी उसमें दोनों हाथों का चुल्लू बनाने का जिक्र था और इसमें एक हाथ का चुल्लू चादर में डालने का जिक्र है। इस हदीस मुबारक की अपने बाप के उनवान के साथ जो मुताबकत है वो इस तरह है कि बाप का उनवान है इल्म की हिफाजत करना और हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने हाफिजा की शिकायत मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मुबारक में की। जो हाफिजा की कमी थी उसका तदारुक मेरे मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दिया और इल्म की हिफाजत के पेश नजर ही ऐसा किया गया है। इस हदीस मुबारक में अजू नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक मौजजा का भी जिक्र है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व ताला की अता से हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो का जो निसियान था, जो भूलने का मर्ज था कि पहले रिवायत सुना करते थे, हदीस समात भी करते थे लेकिन भूल जाया करते थे, इस निसियान को दूर फरमाकर आपको कुव्वते हाफिजा अता फरमा दी। मदनी चैनल के नाजरीन जरा एक और बात की तरफ तवज्जो तो कीजिए कि हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपने निसियान की यानी भूल की शिकायत की। तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि तुम किसी अच्छे तबीब, किसी अच्छे मुआलिज से राबता करो जो तुम्हारे इस मसले का हल तुम्हें बताए। और हजूर ने ये नहीं फरमाया कि मेरा मनसब तो सिर्फ अहकाम शरईया ही बताना है, बल्कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अहकाम शरईया बताने के लिए ही मबऊस नहीं हुए, बल्कि जिसका जो भी दर्द है सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका भी इलाज फरमाते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो हर मुश्किल का हल मौजूद है। और आपने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हो का हाफिजा कवि फरमाकर ये साबित कर दिया कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न अल्लाह है न हाजत अगर की है। फिर क्या क्या कुछ उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा खुद फरमाते हैं, आइए समाप्त कीजिए। हदीस नंबर है 120, इसी बुखारी शरीफ किताबुल इल्म में ही मौजूद है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हो ही खुद इस हदीस मुबारक के रावी हैं। कहते हैं कि हफिज तुमिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विआइन फअम्मा अहदहुमा फबससतुहु वअम्मल आखरु फलौ बससतुहु कुतिया हाजल हुलकूम या हाजल बुलूम। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला नो कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिही वसल्लम से इल्म के दो बर्तन याद कर लिए हैं। मुराद इल्म की दो किस्में हैं कि जो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से मैंने सीखने का या उनके उलूम को हासिल करने का शर्फ हासिल किया है। एक को तो मैंने फैला दिया है और दूसरा बर्तन अगर मैं फैलाऊं, यानी जो दूसरा इल्म है अगर उसका इजहार मैं लोगों पर कर दूं तो मेरा ये नरखरा काट दिया जाएगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया कि बुलूम से मुराद वो नरखरा है जिससे खाना उतरता है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने गोया दो किस्म का इल्म सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल किया। एक तो वही इल्मुल अहकाम है कि जिसका ताल्लुक सुनन से है, अहकाम शरईया से है, वो हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो सीखा था वो लोगों तक पहुंचा दिया। और जो दूसरी किस्म का इल्म है उसमें मुस्तकबिल की बातें हैं, यानी आने वाले जमाने के वाकयात हैं, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाले जाहरी के बाद मुस्तकबिल में क्या क्या होने वाला था और कौन कौन से फितने रूनमा होने वाले थे। हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन फितनों की खबरें हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हों ने सीखी थी और इस किस्म को बेशुमार हिकमतों की वजह से हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हों ने नहीं फैलाया, यानी लोगों के सामने इसका इजहार भी नहीं किया। शारीन हदीस ने इस हदीस मुबारक और दीगर इस तरह की और अहादीस मुबारक के तहत ये लिखा है कि उस इल्म में हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह तआला अन्हु के कातिलीन कौन होंगे और आपके ऊपर जुल्म किया जाएगा, जफा की जाएगी और आपको शहीद किया जाएगा, इसकी खबर भी मौजूद थी। मजीद चैनल के नाज़रीन, इल्म सीखना चाहिए, तारीख पढ़ें, अहादीस पढ़ें, कुरान की आयात बजीनात उनका तर्जमा और सिरातुल जिनान से आप तफसीर का मुताला करते चले जाएं। आप करते चले जाएंगे, सीखते जाएंगे, इल्म बढ़ता चला जाएगा और फिर इस इल्म को जब इस काबिल हो जाए कि आगे फैलाया जा सकता है तो उसे आगे बताने से ये इल्म और महफूज हो जाएगा। मदनी चैनल के नाज़रीन, इसके बाद इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो उनवान लेकर आए हैं उसमें यह है कि उलमा जब गुफ्तगू करें तो फिर उनके लिए वो लोग के जो सामने ऑडियंस बैठे हुए हैं अगर वो किसी गुफ्तगू में मसरूफ हैं तो उनको खामोश करवाना चाहिए ताकि उलमा जब गुफ्तगू करें तो हमातन गोश तमाम के तमाम इल्म हासिल करने की नीयत से उन्हें सुनते रहें। बाब का नंबर है 43, उनवान है बाबुल इंसात लिल उलमा। हदीस नंबर है 121। इस हदीस मुबारक को हजरत जरीर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने रिवायत किया, अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौल लहू फी हज्जतिल वदा इस्तनसितिन नास फकौल ला तर्जिउ बादी कुफारा यद्रिब बादुकुम रिकाब बादिन। حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ نے نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حجت الوداع میں فرمایا کہ لوگوں کو بالکل خاموش کر دو تاکہ وہ خوب سن لیں۔ یعنی لوگوں کو خاموش کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ عالم جو گفتگو کرے گا اس گفتگو کو وہ خاموشی کے ساتھ بڑی توجہ کے ساتھ وہ سماعت کر لیں۔ پھر فرمایا لوگوں میرے بعد پھر کافر مت ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ شارحین حدیث اس حدیث مبارک کے تحت کہتے ہیں کہ اس میں گویا علماء کرام کی عزت و تکریم پر گفتگو کی گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لوگوں کو خاموش کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ علماء کی تعظیم و تکریم کرنی چاہیے، اور ان کی تعظیم کی خاطر جو یہ گفتگو کرتے ہیں ان کے کلام کو سننے کے لیے خود بھی خاموش ہو جانا چاہیے، اور سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو بھی خاموش کروا دینا چاہیے۔ اور اس کی وجہ ایک شارحین حدیث یہ لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں حکم یہ ہوا، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یعنی اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو۔ اور فرمایا جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر آواز کو بلند کرنا منع ہے، اسی طرح جب علماء حدیث پڑھ رہے ہوں تو ان کی آواز پر آواز کو بلند کرنا بھی منع ہے، کیونکہ وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے حکم میں ہے، اس لیے کہ حضور کی حدیث پڑھی جا رہی۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن رہے ہوں تو خاموشی کے ساتھ توجہ کرتے ہوئے سماعت کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد عمل کی کوشش میں لگ جانا چاہیے۔ اس حدیث مبارک میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، یعنی فرمایا کہ میرے بعد پھر کافر مت ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ شارحین حدیث بیان کرتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا یہ ارشاد فرمایا کہ میرے وصال ظاہری کے بعد تم اپنے ایمان اور تقوی اور پرہیزگاری کے اوپر برقرار رہنا، قائم رہنا، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جنگ نہ کرنا، اور آپس میں ایک دوسرے کے مال فاسد تاویلات کے ذریعے سے حاصل نہ کرنا، یعنی تمہارے جو اعمال ہیں وہ کفار کے عملوں کے مشابہ نہیں ہونے چاہیے، کہ کافر جو ہوتا ہے یہ مسلمان کا مال فاسد تاویلات کے ساتھ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، مسلمان کے ساتھ جنگ کرتا ہے اور مسلمان کو قتل کرنے کے در پہ ہوتا ہے۔ تو کہا کہ یہ کفار کے اعمال ہیں، تم کفار کے ان اعمال کو خود اپنی ذات پر اپنا نہ لینا، اور ان کی طرح ایک دوسرے کی گردنیں نہ مارنا شروع کر دینا، کہ یہ نعمت اسلام کی ناشکری ہے کہ اسلام نے جو حقوق تمہیں دیے تھے کہ ایک دوسرے کا مال، اس کی عزت اور اس کی جان کو تمہارے اوپر حرام قرار دے دیا تھا، اور اگر تم بالکل اس کے اپوزٹ چلتے ہو، اس کے خلاف چلتے ہو، تو یہ نعمت اسلام کی گویا ناشکری ہے۔ اور یہ کہ اگرچہ ایسا حلال سمجھ کر نہ بھی کرے تب بھی کفر کے قریب تو ہے، کفر کے مشابہ تو ہے، کہ یہ کام تو کفار کے تھے اور مسلمانوں نے خود اپنی ذات پر ان کو اپنا لیا، اور کفر تک یہ عمل پہنچانے والے ضرور ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کے علاوہ بھی علماء نے اس کے محامل بیان کیے ہیں، جو حدیث کا شوق رکھنے والے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں ہیں ان کو چاہیے کہ شروعات حدیث کو پڑھ کر وہ جان سکتے ہیں کہ اس کے محامل اور کیا کیا ہیں۔ ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا، آپ ہمیں اجازت دیجئے، دعا گو ہیں، اللہ کریم ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، اور اپنے فضل و رحمت کا صدقہ ہمیں علم کی دولت سے مالا مال فرمائے، اور اپنے علم پر عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔
ایمان ہے